The Flood, Sailab by Emil Zola. Tehreer aur Peshkash, Sayyed Irfan Ali. www.server555.com. ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताके हंसते हुए निकले दम। मेरी उम्र 70 साल है। 14 साल मुसलसल जद्दोजहद करने के बाद फितरत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थीं। सूरज हमारा साथी था और मुझे याद नहीं कि हमारी कभी फसल खराब हुई हो। मेरे कुनबे में 12 अफराद थे। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन जो शोहर की वफात के बाद मेरे पास आ गई थी, मेरे बच्चे और फिर उनके बच्चे। मैं दादा परदादा बन चुका था मगर अब भी काम करने की हिम्मत बाकी थी। बच्चे मुझे देखते तो खुशी से पुकारते, दादा अबू, दादा अबू। दिन को हम काम करते और रात को इकट्ठे बैठकर कहानियां सुनते और बातें करते। फरिश्तों की मानिंद मासूम और खूबसूरत बच्चे हमारे साथ होते। घर की ऊपर की मंजिल मैं बनवा चुका था और हंसकर कहता कि एक और मंजिल भी जल्द ही तामीर करवाऊंगा। सब एक साथ रहते थे और जुदाई का कभी ख्याल तक ना आया था। मई का महीना शानदार था, फसलें खूब हुई थीं। मैं अपने बेटे के साथ फसलों को देखने गया। शानदार दरिया के किनारे लहलहाती फसलें पिछले साल से भी आगे निकल गई थीं। मेरे बेटे ने कहकह लगाते हुए कहा, खुदा आप पर मेहरबान है अबू जी। हम अमूमन अपने माजी की गुर्बत के बारे में मजाक करते थे। मैंने कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाई थी और शायद इसीलिए ये खुशियां मिल रही थीं। 100 के करीब जानवर हमारे पास थे, गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां, बहुत से घोड़े। मैं खुश था और कहा कि रात को जश्न मनाएंगे और शानदार खाना खाएंगे। रात को हम 11 अफराद मौजूद थे, कुछ ऐसे जिनकी शादी को 25 साल हो चुके थे, कुछ की शादी को सिर्फ 3 साल। लगता था हम जन्नत में रहते हैं। शानदार खाना खाया, गाने गाए गए, फिर बातें हुई कि कुछ इलाकों में 60 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। मैंने कहा हर साल ही ऐसा होता है, दरिया का पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है फिर सुकून से बैठ जाता है, हमें इस पर पूरा भरोसा है। देखो आसमान कितना साफ है, हर तरफ सुकून है, हमसाये भी खुश हैं। लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही थीं। फिर अचानक दूर से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। इंतहाई खौफजदा आवाज़ में लोग चिल्ला रहे थे, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। दरिया और घर के दरमियान बुलंदोबाला दरख्तों की वजह से दरिया नज़र नहीं आता था, मगर 2 आदमी और 3 औरतें भागते हुए नजर आए। रफ्तार इतनी तेज जैसे मौत पीछे लगी हो। बार बार मुड़कर पीछे देखते और चीखते, बचाओ बचाओ, पानी आ रहा है। हम हैरान थे कि क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक था, मगर फिर दरख्तों के दरमियान से पानी तेजी से आता नजर आया। अब हम भी चीख रहे थे, सैलाब सैलाब। औरत और मर्द पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पानी ने दरख्तों को नीचे गिरा दिया, दीवारें हमारे सामने टूट रही थीं। पानी के जोर से चीज़ें ऐसे बह जातीं जैसे उनकी कोई हकीकत ना हो। मैं भी घबरा चुका था और जल्दी से कहा, सब घर के अंदर चलो, ये मजबूत बना हुआ है। पानी खामोशी से हमारे घर में भी दाखिल हो गया। सबको लेकर मैं ऊपर की मंजिल पर चला गया, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बेटा बोला, हम तो बच जाएंगे मगर हमारी फसलें तो ये तबाह कर ही देगा। नहीं, वो भी बच जाएंगी, मैं बोला, और मुलाजमों को आवाज़ दी कि वो भी ऊपर आ जाएं। वो बोले, जानवर परेशान हैं और आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें बाद में देखेंगे, तुम ऊपर आ जाओ। मैंने घर वालों को तसल्ली देने की कोशिश की। अब हर तरफ पानी ही पानी था, सबके चेहरे परेशान थे। बातों से उन्हें बहलाने की कोशिश की मगर पानी की आवाज़ से हौसले पस्त हो जाते। लगता था पानी बुलंद हो रहा है। मैं ज़िंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुआ था जितना पानी की गुर्राहट परेशान कर रही थी। पानी वाकई बुलंद हो रहा था और ऊपर की मंजिल तक पहुंच रहा था। जानवरों की हालत बहुत ख़राब थी। मौत को सामने देखकर उनकी भयानक आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंच रही थीं। खिड़की से बाहर देखा तो हमारे हौसले ख़त्म होने लगे। दूर दूर तक पानी, किसी इंसान की आवाज़ नहीं, सिर्फ पानी का शोर और जानवरों की चीखें। औरतें आहिस्ता आवाज़ में कहे जा रही थीं, मेरे खुदा, मेरे खुदा। लगता था खौफ की वजह से बुलंद आवाज़ में बोलने की हिम्मत नहीं। फिर जानवरों ने अस्तबल के दरवाज़े तोड़ दिए। भेड़ बकरियां पानी में ऐसे बह रही थीं जैसे दरख्त के पत्ते। दूसरे जानवर भी पानी में डूब रहे थे। हमारे शानदार सेहतमंद घोड़े ने बहुत देर तक पानी से मुकाबला किया, फिर हार मान ली और डूब गया। पहली मर्तबा हमारी आँखों से आंसू बह रहे थे। हमारे जानवर ख़त्म हो गए, फसलें तबाह हो गईं। चंद घंटे पहले जो लोग खुशहाल थे अब तबाह हाल हो चुके थे। खुदा, हमने कौन सी बुराई की जिसकी सज़ा हमें यूं मिल रही है? पानी हम तक पहुंच चुका था। मैंने हिम्मत बढ़ाई, पैसा गया तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, इस वक्त हमें अपना ख्याल रखना है। बच्चे बोले, हाँ अबू जान, आप ठीक कहते हैं, घर मजबूत है, हमें छत पर चले जाना चाहिए। पानी बुलंद हो रहा था, छत हमारा आखिरी सहारा थी। मैंने पूछा कि मुलाजिम कहाँ हैं? वो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे कि पानी ने उनका खात्मा कर दिया। छत काफ़ी बड़ी थी, ज़रूर हमारी मदद को लोग जल्द ही आ जाएंगे। बच्चे मुलाजिमों के मरने का इल्म होने पर रो रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था, मगर नीचे पानी की लहरें मुसलसल बुलंद हो रही थीं, जो छत तक पहुंचने ही वाली थीं। दूर से दीवारों के गिरने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। दरख्त भी गिर रहे थे, घर लरस रहे थे। बेटा बोला, हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं बोला, मगर हम कर ही क्या सकते थे। वो बोला, चर्च में पनाह लेनी पड़ेगी, वहाँ पहले ही कुछ लोग मौजूद होंगे। बेटा चिमनी की मदद से साथ वाले घर की छत पर कूद गया। उसकी बीवी ने उसे जाता हुआ देखा तो चीखने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस हालत में भी अपने बच्चों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। पहले तो अपनी बीवी से उसने कहा कि आगे मत आओ, मगर जब देखा कि वो खुद ही आने लगी है तो वापिस आया और सहारा देकर बीवी को भी ले गया। मैंने देखा कि पानी की लहरें बढ़ रही हैं, जो आगे के घरों को भी हिला रही थीं। तो चीखा, आगे मत जाओ, वापस आ जाओ, मगर पानी की आवाज़ ने मेरी आवाज़ उस तक ना पहुंचने दी। वो आगे सिरकते रहे और बहुत बुलंद इमारत तक पहुंच गए, मगर भयानक वक्त आ रहा था। वो इमारत फैक्ट्री के मकसद से बनाई गई थी, बहुत कमज़ोर थी और दूर से हिलती हुई नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद वो गिर गई, बेटा उसके साथ पानी में गिरा। पानी में सिर्फ इमारत का मलबा नज़र आ रहा था, जिसमें मेरा बेटा ज़िंदगी बचाने की अनथक कोशिश कर रहा था। मगर दरअसल उसका पैर मलबे में फंस चुका था और वो इसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बीवी चंद फुट दूर खड़ी उसे मरते हुए देख रही थी। दो बच्चे भी उसके साथ थे। उसकी चीखों की आवाज़ें मुसलसल हमारे कानों तक आ रही थीं। मेरे दूसरे बच्चों ने उसके पास जाने की कोशिश की, मगर दरमियान के घर गिर रहे थे। दूर मुझे अपना बेटा नज़र आ रहा था, जिसने ज़िंदगी बचाने की कोशिश ख़त्म कर दी थी और पानी में आहिस्ता आहिस्ता डूब गया। सब लोग रो रहे थे। फिर छत तक पानी आ गया। पानी के साथ बहती हुई चीज़ें आकर मकान को तोड़ने और हमें डबोने की कोशिश कर रही थीं। हर लम्हे ख़तरा बढ़ता जा रहा था। काश मुझ में हिम्मत होती कि मैं अपने बच्चों को बचा सकता। दूर खड़े दोनों बच्चों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ था और मुसलसल मदद के लिए पुकार रहे थे। एक तख्ता पानी में बहता हुआ आया। मेरे पोते ने उसे पकड़ा और कहा कि इसमें बैठकर हम बच सकते हैं। हम उस पर बैठे, मगर वो हमारे बोझ से छत पर बैठ चुका था। पानी से जंग जारी रही और अब 12 अफराद में से 5 अफराद छत पर मौजूद थे, बाकी सब सैलाब के हाथों शिकस्त खा चुके थे। जो जिंदा बचे थे उनकी हालत भी सख्त ख़राब थी। यही खौफ था कि पानी की बड़ी लहर आएगी और छत से हमें बहाकर ले जाएगी। और हकीकत भी यही थी, हमारे चारों तरफ पानी में चीज़ें ऐसे बह रही थीं जैसे उनकी कोई वक़्त ना हो। तकरीबन सारे गांव के मकानात तबाह हो चुके थे, सिर्फ चर्च की इमारत से कुछ इंसानी आवाज़ें कभी कभार आ जातीं। घरों के टूटने की जो आवाज़ें पहले सुनाई देती थी वो भी आना अब बंद हो चुकी थी। ऐसा मालूम होता था कि हम पानी के दरमियान हैं और ज़मीन हमसे हजारों मील दूर है। फिर एक सुहानी आवाज़ सुनाई दी, कश्ती के चप्पुओं की आवाज़ आई मगर दूर दूर तक कुछ नज़र ना आया। हमने आवाज़ें दी, कपड़े लहराए मगर कोई मदद को ना आया। फिर बच्चे ने कहा, वो देखें वो दूर कश्ती है। फिर वो मुझे भी नज़र आ गई। सब ने आवाज़ें दी मगर वो दोबारा नज़रों से ओझल हो गई। घर की हालत पानी ख़राब कर रहा था और लगता था कि सुबह तक ये गिर जाएगा। मेरे भाई ने कुछ सोचा, नज़र आ रहा था कि अपने प्यारों की मौत और सामान की तबाही से वो दिल बर्दाश्ता हो चुका है। खुदा हाफिज़ भाई, ये छत ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो गहरे पानी में उतर गया और देखते देखते पानी में डूब गया। रात ख़त्म हुई, फिर पोता बेचैनी से हाथ मलता हुआ बोला, दादा अबू बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं अपनी बहन को लेकर तैरता हुआ चर्च तक जाऊंगा। मैंने मना किया मगर उसने बात ना मानी और कहा कि बहन को बचा लूंगा और मदद के लिए कश्ती और खाने की चीज़ें भी लाऊंगा। उसकी ज़िद के सामने मैंने हार मान ली। उसने नन्ही बच्ची को अपने साथ बांधा और पानी में उतर गया। बच्ची ने चीखें मारी, कुछ दूर तैरता रहा, पानी के नीचे किसी चीज़ से टकराया और दोनों पानी में डूब गए। दोबारा निकले मगर थोड़ी देर बाद पानी में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गए। एक बच्ची जो मेरे पास रह गई थी वो शायद दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी, कभी हंसती कभी रोती, फिर अचानक कहने लगी, मैं आ रही हूँ, हाँ हाँ मैं बस आती हूँ। उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर वो भी पानी में उतर गई और मेरी नज़रों के सामने डूब गई। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी, पानी ऊपर आ रहा था। मैंने आखिरी बचने की जगह चिमनी में पनाह ली और बेहोश हो गया। मेरे सब बच्चे मेरे सामने पानी ने ख़त्म कर दिए थे। मेरे सारे बच्चे मर चुके थे, फसलें उजड़ चुकी थीं, घर पानी ने तबाह कर दिया था। कितना खूबसूरत वो वक्त था जब सब बच्चे मेरे गिर्द जमा होते और मैं दोबारा अपने आप को जवान महसूस करता। हम फसलों से वापस आते और अपनी सरसब्ज फसलों को याद करके फूलाना समाते। खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे, उनकी प्यारी और मीठी आवाज़ें, यही तो मेरा उम्र भर का ख़जाना था जो मुझसे जुदा हो चुका था। सब मर गए तो मेरे ज़िंदा रहने का अब क्या मकसद। मेरे बच्चे तो ऐसा ख़जाना थे जो कोई भी वापस नहीं ला सकता। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़मीन उनको दे दूंगा जिनके बच्चे अब भी ज़िंदा हैं। शायद उनमें हिम्मत हो कि सैलाब ने जो तबाही मचाई दोबारा उसे दुरुस्त कर सकें। जब बच्चे ना हों तो सिर्फ़ एक कब्र के लिए जगह की ज़रूरत होती है। अब तो मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश, कि अपने बच्चों की लाशें ढूंढकर उन्हें दफना सकूं और फिर खुद भी उनके साथ उनके दरमियान दफन हो सकूं। पता चला कि बहुत सी लाशें पानी से निकाली जा रही हैं, सो मैं भी उस जगह पहुंच गया। कितनी बड़ी आफत थी, 2000 से ज़्यादा मकानात पानी ने तबाह कर दिए, 700 लोगों को ख़त्म कर दिया, तमाम पुल अपने साथ बहा कर ले गया। हर तरफ मातम था, लोग भूख से मर रहे थे, हर गली से जनाजे उठ रहे थे, मगर मैं इन तमाम चीज़ों से लाताल्लुक कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरी तबाही उन लोगों की बर्बादी से कम ना थी। बताया गया कि बहुत सी लाशें चर्च में दफनाई जा चुकी हैं। हाँ, लाशों की तस्वीरें उतार ली जाती थीं। इन तस्वीर में मेरे दो बच्चों की तस्वीर भी थीं। उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से चिमटा रखा था। जिंदगी में वो एक दूसरे के करीब रहे और मौत के वक्त भी वो साथ साथ थे। दफनाने के लिए उन्हें जुदा करना ज़रूरी था, मगर उससे पहले ली गई तस्वीर में वो बगलगीर थे, अब ज़मीन के अंदर भी वो साथ साथ थे। मैंने अपने प्यारे बच्चों की तस्वीर को देखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताके हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना।